नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को होटल ताज में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री मैक्रों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंजूरी दी। इसके साथ ही तटरेखा परिवर्तन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा। नमूनागर, मीठाखाड़ी और ओगरा ब्रांच में राजस्व भूमि को दक्षिण अंडमान प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कब्जे से मुक्त कराया और जहाजरानी सेवा निदेशालय ने फिनिक्स बे और बमूफ्लड जट्टी के बीच फेरी सेवाओं में बढ़ोतरी कर यात्री सुविधा और कनेक्टिविटी सुनिश्चित की। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। आज मुंबई के लोकभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित प्रमुख क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। इस अवसर पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। अपने मुंबई दौरे के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों ने ऐतिहासिक ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में एकजुटता दिखाई। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में उन्होंने कहा कि फ्रांस आतंकवाद के सामने भारत के साथ खड़ा है और पीड़ित परिजन को पूर्ण समर्थन देता है। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारतीय सिनेमा के प्रमुख हस्तियों से भी संवाद किया, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को मंजूरी दे दी है। अधिकरण ने कहा है कि इसके लिए पर्यावरण मंजूरी की शर्तों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली कोलकाता की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ ने कल यह आदेश पारित किया। इससे पहले कई याचिकाओं में परियोजना के लिए दी गई स्वीकृतियों को चुनौती दी गई थी, जिनमें द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के उल्लंघन का दावा किया गया था। NGT ने कहा कि पर्यावरण सहमति की शर्तों का पूर्ण और प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय समुद्र तट पर कोरल रीफ की सुरक्षा के सभी उपाय करेगा और परियोजना क्षेत्रों के पास उपयुक्त क्षेत्रों में कोरल के पुनरुत्थान के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग सुनिश्चित करेगा। NGT ने सुझाव दिया कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाएं इसमें शामिल की जा सकती है। ग्रेट निकोबार द्वीप के तटरेखा क्षरण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि किसी भी तरह का तटरेखा परिवर्तन न हो और पूरे द्वीपों में रेतीले समुद्र तट सुरक्षित रहे, क्योंकि ये समुद्र तट कछुओं और पक्षियों के घोंसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। NGT ने यह भी कहा कि द्वीप समूह में कोई उच्च शरण क्षेत्र नहीं है, इसलिए तीनों मौसम का डेटा होना आवश्यक नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अगले 2 वर्षों में AI के क्षेत्र में $200 अरब से अधिक की निवेश की अपेक्षा कर रहा है। आज नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस सम्मेलन में देश के हर कोने से लोग इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। भारत AI के उचित और उत्तरदायी उपयोग पर वैश्विक नेताओं के बीच सहमति बनाने का प्रयास करेगा, ताकि इसका उपयोग मानवता के हित में किया जा सके। AI परितंत्र में वास्तविक कठिनाइयां और बाधाएं हैं, जिनका समाधान तकनीकी विधि के दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का समाधान केवल नियमों या मात्र कानून बनाने से संभव नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है अतिक्रमण और जहाजरानी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जिला प्रशासन ने नमूनाघर, मीठाखाड़ी और ओग्रब्रंज ग्रामों में अतिरिक्त कब्जे से राजस्व भूमि को मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया। यह भूमि अधिसूचित या एवं अभिलेखित वन सीमाओं से बाहर पाई गई थी और वन विभाग के अतिरिक्त कब्जे में थी। सरकारी भूमि के संरक्षण के वैधानिक दायित्व के तहत राजस्व अभिलेखों के सत्यापन, सीमांकन और अतिरिक्त भूमि की पहचान के बाद 11 फरवरी को अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान अतिरिक्त राजस्व भूमि पर लगाए गए लगभग 170 सीमेंट के खंभों को हटाया गया। एक खंभे सरकारी खाते में दर्ज राजस्व भूमि पर बिना वैध अनुमति के स्थापित किए गए थे। कार्रवाई के परिणाम स्वरूप फरारगंज तहसील के अंतर्गत तीनों ग्रामों में अवैध कब्जे में रही कुल 23.895 हेक्टेयर भूमि को प्रशासन ने अपने अधिकार में ले लिया। भूमि को पुनः सरकारी खाते में दर्ज कर राजस्व विभाग ने विधिवत कब्जा ग्रहण कर लिया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि भारत AI के वर्चस्व के दौर की दहलीज पर खड़ा है। डॉक्टर कुमार आज दिल्ली में विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के 127वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ सहज उपलब्ध होने लगता है तब सुविधा में डूब जाने का आकर्षण बढ़ जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आंकड़ों का विश्लेषण कर सकती है किंतु वह मानवीय प्रश्न उत्पन्न नहीं कर सकती जिनके उत्तर भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। भविष्य इस बात से निर्धारित नहीं होगा कि जीवन कितना सरल हो गया है बल्कि इस बात से होगा कि आप उस सरलता का उपयोग किस प्रकार करते हैं। वर्तमान पीढ़ी ने सार और शोर के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित की है। शोर से सार को पृथक करने की कला में दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि AI के युग में दुष्प्रचार मौजूद है और यह खतरनाक है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिनिक्स बे जेट्टी और बम्बूफ्लैट जेट्टी के बीच संचालित फेरी सेवाओं में बढ़ोतरी की है। संशोधित समय सारणी कल से लागू हो गई। बढ़ती यात्री संख्या और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त फेरी सेवाएं जोड़े गए हैं। इससे दैनिक आवागमन करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी। संशोधित कार्यक्रम के तहत सुबह 6:15 पर फिनिक्स बे से पहली यात्री फेरी रवाना होगी जबकि वाहन फेरी 7 बजे चलेगी। इसके अलावा 7:15 पर, 8:15 और 9:15 तथा 10:30 भी यात्री फेरियां उपलब्ध रहेगी। दोपहर और शाम के समय में भी कई फेरियां संचालित होगी जिनमें 12 बजे, 2 बजे, 3:15, 5:15, 6:15, 7:15 तथा 8:15 की सेवाएं शामिल हैं। बम्बूफ्लैट से फिनिक्स बे के लिए भी संशोधित समय के अनुसार सुबह 5:15 में पहली फेरी होपटाउन मार्ग से रवाना होगी। इसके बाद नियमित अंतराल पर दिनभर फेरियां संचालित होगी। मायाबंतर में ट्राई उपभोक्ता आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन 25 फरवरी को सुबह 10:30 महात्मा गांधी सरकारी कॉलेज में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों को ट्राई द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में अवगत कराना है ताकि टेलीकॉम और केबल ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, शिकायत निवारण तंत्र और नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के पीड़ितों को होटल ताज में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री मैक्रों के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंजूरी दी। इसके साथ ही तटरेखा परिवर्तन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा। नमूनाघर, मीठाखाड़ी और ओग्रब्रंज में राजस्व भूमि को दक्षिण अंडमान प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कब्जे से मुक्त कराया और जहाजरानी सेवा निदेशालय ने फिनिक्स बे और बम्बूफ्लैट जेटी के बीच फेरी सेवाओं में बढ़ोतरी कर यात्री सुविधा और कनेक्टिविटी सुनिश्चित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।